मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तागि जाते पे अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग आचार्य भगवंतों ने जैसा हमारे जीवन के अच्छा बनाने के लिए उपदेश दिया है उस पर विचार कर रहे हैं और अपने आचरण में जितना जिससे संभव है उतना लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमने पिछले दिनों से लगातार हमारे जीवन में समता भाव आवे इस बात पर विचार किया है। सामायिक जिसे हम समता की साधना या समता का अभ्यास कहें तो कह सकते हैं, थोड़े से क्षण घर गृहस्थी में हम निकालें जिसमें कि हम पांच पापों का त्याग करके अपने मन वचन काय को पंच परमेश्वरी के स्मरण में व्यतीत करें और विचार करें कि संसार की अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं में मैं जिस तरह हर्ष विषाद करके राग द्वेष करके अपना संसार बढ़ाता हूं, मैं धीरे धीरे उससे कम करूं और अपने जीवन को सार्थक बनाऊं। रोज ऐसा विचार करके कम से कम दो घड़ी, अधिक से अधिक छह घड़ी तक एकाग्रचित्त होकर मन वचन काय की कलुषता को हटाकर समता भाव लाने का अभ्यास एक शावक करता है, कर सकता है। वह भी घर गृहस्थी में रहकर अपना आध्यात्मिक विकास कर सकता है। इतना ही नहीं, पर्व तो किसी निमित्त से जब आते हैं तो हम उन पर्वों पर विशेष रूप से अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, पर कुछ शाश्वत पर्व भी हैं जैसे अष्टमी और चतुर्दशी, जिन्हें कि आचार्यों ने शाश्वत पर्व कहा है, जो किसी निमित्त से नहीं होते हैं, अनादि काल से हैं, अनंत काल तक जो रहेंगे। ऐसे जैसे अपन ने दश लक्षण पर्व जो कि शाश्वत पर्व है, सोलह कारण पर्व जो कि शाश्वत पर्व है अभी अपन ने मनाए हैं, ऐसे ही श्रावक पूरे साल भर अष्टमी चतुर्दशी जो कि शाश्वत पर्व है उन पर पांचों पापों का त्याग करके समस्त आरंभ और परिग्रह का त्याग करके स्नान अंजन इत्यादि का विकल्प छोड़ करके साधना कर सकता है कि मुनि महाराज अपने जीवन को कैसे व्यतीत करते होंगे। इसे आचार्य भगवंतों ने प्रोषद उपवास कहा है। प्रोषद का एक अर्थ होता है पर्व, दो अष्टमी, दो चतुर्दशी जो कि प्रतिमाह आती हैं, उन पर्वों में चारों प्रकार के आहार का त्याग करके समस्त आरंभ परिग्रह स्नान अलंकार इत्यादि आभूषण इत्यादि धारण करने का विकल्प न करते हुए अपने मन वचन काय को एकाग्र होकर के और पंच परमेश्वरी में लगाना, उनके गुणों का स्मरण करना, यही प्रोषदोपवास। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने प्रोषद का अर्थ एक बार भोजन करना यह भी लिखा है। दिन भर में दो ही वेलाएं भोजन की कही गई हैं, एक प्रातः काल की वेला और एक संध्या काल की वेला, दोपहर की वेला। लिखा भी है कि जो गृहस्थ है वो तो दो बार भोजन करता है और जो साधु जन या योगी हैं वो एक बार भोजन करते हैं। जो बार बार भोजन करते हैं उन्हें तो क्षुधा की वेदना एक रोग की तरह निरंतर पीड़ित किए हुए है, सो रोगी ही बार बार भोजन करता है। बुरा नहीं मानना भाई कि अपन रोगी हो गए, अपन तो वीर वीर खा ले, नहीं लिखा हुआ है कि हमें भी इस क्षुधा रूपी जो रोग लगा हुआ है उसको जीतने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रोषद उपवास के करने से हम अपनी क्षुधा को जीत सकते हैं। ऐसा उपवास जिसके आगे पीछे एक बार भोजन किया जाता हो, ऐसे उपवास को भी प्रोषद उपवास कहते हैं। सो अष्टमी का उपवास करना है या चतुर्दशी का उपवास करना है, सो सप्तमी नौमी के दिन और तेरस और अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी एक आसन पूर्वक ही धर्म ध्यान करते हुए अपना दिन व्यतीत करेंगे। और उपवास के दिन क्या करें? चारों प्रकार के आहार का त्याग करके घर गृहस्थी के कार्यों का भी त्याग कर दिया। ऐसा नहीं कि आज तो चारों प्रकार का आहार नहीं करना है सो और दूसरे काम घर गृहस्थी के विस्तार लो, नहीं भाई, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके उपवास करे तो ही श्रेष्ठ है। घर गृहस्थी के कामों में लग करके भी अपन उपवास करते हैं, पर साधना ऐसी भी करना चाहिए कि मैं ऐसा उपवास करूं जिसमें घर गृहस्थी का काम न विस्तारूं। हम पहले अपने माँ पर बहनों पर हंसते थे, हंसी उड़ाते थे कि देखो आज उपास है सुमंदर चले हैं, भोजन देखेंगे ही नहीं तो याद ही नहीं आएगी, मंदिर में दिन व्यतीत करेंगे जिस किसी तरह, ऐसा करके उनका हंसी उड़ाते थे। आज समझ में आता है कि देखो उन्होंने अपने उपवास को सार्थक करने के लिए धर्म ध्यान पूर्वक अपना दिन व्यतीत करने का संकल्प लिया। घर गृहस्थी में रहेंगे तो घर गृहस्थी के सैकड़ों विकल्प मन में बने रहेंगे और धार्मिक लोगों के बीच में अपना दिन व्यतीत करेंगे तो अगर थोड़ा बहुत मन में विचार भी आएगा चार प्रकार के भोजन के ग्रहण करने का तो वह दूर हो जाएगा। अब आज के समय में अपन उपवास करते हैं और या तो कोई उपन्यास लेकर के पढ़ने लगेंगे समय निकालने के लिए, और या फिर टेलीविजन तो है सो उसको देखते हुए बैठे रहेंगे, और संध्या भाई सो अपनो बिस्तर लगाओ और सो गए, अब तो हमें नींद आ रही, उपवास तो हम आवाज को, ये भैया तो क्या फायदा हुआ उपवास से अकेले, लंघन करी आपने चार प्रकार के आहार का त्याग किया, अरे चारों कषायों का भी अपन शमन करने का प्रयत्न करें, धर्मामृतम सतृष्णा, धर्मामृत का पूरे तत्परता के साथ पूरी रुचि के साथ पूरे उत्साह के साथ स्वयं धर्मामृत का पान करें, और इतना ही नहीं और लोगों को भी धर्मामृत का पान कराएं। उपवास के दिन ऐसा करके हम अपने उपवास को सार्थक कर लेते हैं। सो ऐसे प्रोषदोपवास की चर्चा भी शिक्षाव्रत के रूप में आचार्य भगवंतों ने की है। एक और शिक्षा व्रत है जिसे अपन अतिथि संविभाग या कि बैया व्रत कहते हैं। हम रोज ही आहार ग्रहण करके या अन्य वस्तुओं को ग्रहण करके उस आहार के माध्यम से अपने परिणाम कलुषित करते रहते हैं। क्या करूं कि मेरी सारी सामग्री आहार की पवित्र हो जाए, सार्थक हो जाए मेरा बनाना, तो उपाय यही है कि मैं अपने आहार में से कुछ भाग अतिथि को दूं। अतिथि संविभाग व्रत इसी का नाम है, यह कि साधु जन उनके प्रति रत्नत्रय के प्रति हमारे मन में अनुराग है, सो उस अनुराग वश हम उनकी सेवा करते हैं, यही बैया व्रत है। अतिथि तो जो संयमी व्यक्ति निरंतर अपने संयम का पालन करता है और बिना तिथि के आने जाने की प्रक्रिया करता है, ना आते समय आने से पहले बताता है, न जाते समय जाने से पहले डिक्लेयर करता है कि मैं जाऊंगा, वही अतिथि है। बाकी तो सब अपन मेहमान और अभ्यागत हैं कि जो पहले से अपनी व्यवस्था के लाने दो दिन पहले समाचार भेज दे और जब जाऊं लगे से रिजर्वेशन करवा लो, हैं करवाना पड़ता कि अच्छी सुविधा से अपनी यात्रा हो जाए। सो ऐसी सुविधा से तो अपन धर्म आज करने लगे हैं, पर वास्तव में देखा जाए क्या हम इस तरह से धर्म करेंगे? नहीं कहना चाहिए, लेकिन क्या करें, कहे बिना रहा नहीं जाता। अत्यंत मन में जब से सुना है तब से दुख है कि कल अपन ने इतना बड़ा आयोजन किया जिसके लिए हमने और अपना जो 3 बजे से धर्म ध्यान करते वो भी छोड़ा, और सब लोगों ने वहां सिंहोनिया में जाकर के और क्या किया है ये सुन करके शर्म लगती है कि वहां पर खिलाने वाले परोसने वालों ने आलू के समोसे खिलाए, पाउच बेचने वालों ने मंदिर के सामने से पाउच बेचे, हम खाने वाले लोगों को अपनी जिब्बा पर इतनी लगाम नहीं है कि एक दिन के लिए हम पाउच और आलू का त्याग कर दें। ये देख करके जो लोग थे वो कहने लगे कि हमें अच्छा नहीं लगा, हम तो आए थे कि अच्छा धर्म ध्यान होगा, वहां के दर्शन करने मिलेंगे। सो कल ही कहा था हमने कि भैया ये तो भीड़ है, सो भीड़ तो आना जाना फ्री कर दो, खाना फ्री कर दो, सो खूब हो जाएगी। ऐसे अपने धर्म के आयोजन में अपन भीड़ को क्राइटेरिया मान लेते हैं कि सफल हो गया, बहुत भीड़ हुई थी, लेकिन का काम की भैया अपन ने धर्म किया या कि धर्म के क्षेत्र पर जाकर के वो धर्म की हंसी करी, ये अपन के धर्म ऐसे करने के जो तरीके हैं उनको सुधारना चाहिए। जरा सा किसी ने कल ही रास्ते में भीड़ होने से थोड़े से समझदारी का काम करके पैर छू रहे थे, सो पैर छूने के लिए मना किया, सो चार कदम आगे निकल के आए और पूरी नवयुवकों की भीड़ में और हंसी ठट्टा कि देखो जी बड़े हो गए आचार्य श्री से, बड़े हो गए पांव नहीं छुअन दे रहे, अब बताओ। कल मुझे लगा कि कोई जो कि वीतरागता में श्रद्धा नहीं रखता वो हंसी उड़ावे तो ठीक है, लेकिन वीतराग धर्म में पैदा हो करके वीतराग मार्ग पर चलते हुए साधु जनों के लिए इस प्रकार के भाव अपने मन में आवे तो कितने दिन और रहेगा ये धर्म। इस बात को सोच करके हमारे लिए अत्यंत कष्ट हुआ, होना नहीं चाहिए था, समता रखनी चाहिए थी लेकिन नहीं रख पाए भाई। ये देख करके लगा कि बोलना तो चाहिए, धीरे धीरे हमारा धर्म का जो सोच है वो खत्म होता जा रहा है, हम क्रियाओं को ही धर्म मान लेते हैं। धार्मिक आयोजनों में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वीतरागता और हमारी अहिंसा ये धर्म है, ये बना रहे, और सब बाद में, पहले हमारी वीतरागता और हमारी अहिंसा, इसका पोषण होना चाहिए तो हम अपने जीवन में धर्म धारण कर पाएंगे। आचार्य भगवंतों ने तीन प्रकार के दान कहे, लौकिक, और चार प्रकार का दान अलौकिक। ऐसे लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार के दान की अतिथि संविभाग या बैयाव्रत की चर्चा करी। वैसे तो अपन ने तत्वार सूत्र में 10 प्रकार की बैयाव्रत्ति, विभिन्न आचार्य उपाध्याय आदि जो 10 भेद हैं उनकी अपेक्षा से करी, लेकिन और समझने की कोशिश करें कि लौकिक दान और पारलौकिक दान क्या है। सो लौकिक दान के 3 भेद करें, एक सकल दत्ति, एक समदत्ति और एक दया दत्ति। दत्ति मतलब दान। सकल दत्ति क्या कहलाएगी? अपने योग पुत्र को जो कि धर्म की परंपरा और कुल की परंपरा को आगे बढ़ाए, उसे अपनी सारी संपत्ति सौंप करके स्वयं दीक्षा ले लेते हैं, घर से विरक्त हो जाते हैं, यह सकल दत्ति है। अब तो इसका स्वरूप बदल गया, जिसके हाथ में लाठी होवे, अयोग्य भी होवे, तो वह भी संपत्ति पर अपना अधिकार बना लेता है। लिखा हुआ है उसे भी दान कहा कि जो जीवन भर ईमानदारी से कमाई करी थी उसका क्या करूं, अपने योग पुत्र को, वही योग्य है जो कि धर्म की परंपरा को और कुल की परंपरा को आगे बढ़ावे, उसमें 4 चांद लगावे, उसे अपनी समस्त संपदा को दे करके और स्वयं संसार से विरक्त होकर के चले जाते हैं, ऐसा जो दान है वह दान सकल दत्ति कहलाता। अपन को समझना तो चाहिए, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे ये बात जुदी है, लेकिन ध्यान में तो रहे। और समदत्ति, समदत्ति तो वो कहलाती कि अपने सामान आचार आचार विचार वाले व्यक्ति को अपनी बेटी और गृहस्थी के योग सामान इत्यादि दे करके विदा करना और अपने कर्तव्य से मुक्त होना, ये समदत्ति कहलाती। सो आज तो अपन समान आचार विचार नहीं देखते, पैसा देखते हैं। थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर ले अपन, कर सकते हैं कि हम समान आचार विचार वाले को ही अपनी बेटी देंगे, और जो घर गृहस्थी का सामान दिया जाता है सो देंगे, आपकी कोई अगर मांग है तो उसे हम पूरी नहीं करेंगे। बेटियों को कहता हूं कि युवा से विवाह करना, वृद्ध से विवाह नहीं करना। जो अपने बाहुबल से कमा सके सोई युवा है और जो दूसरे से संपत्ति मांग करके अपने भरण पोषण के लिए 4 लाख 10 लाख रुपया रखवा ले गए, वो काहे का युवा है, वो तो वृद्ध हो गया जिसको अपने पौरुष पर जरा भी गौरव नहीं है। जो दूसरे की कमाई हुई संपत्ति पर लालच करके उसे हड़पना चाहता है, इस बहाने बंदूक लेके डाकू तो अपनी छाती पर अड़ा दे, 100 रुपया धर दे, मनोज्जा बंदूक अलग है, डॉक्टर की हमारा का डॉक्टर है एक बंदूक, सो तान दई ऊपरे धरो 20 लाख रुपया जब करें ब्याह, हमारा का इंजीनियर है लगाओ दाओ, जिसके जितने पैसा लगा सको उतने लगाओ, ऐसा अपन आज करने लगे हैं। लेकिन क्या योग है, क्या इसमें धर्म होगा, जबकि आचार्य भगवंतों ने इसे भी लौकिक दान माना है, इससे भी जीव अपना कर्तव्य पालन करके जीवन को अच्छा बना सकता है। और फिर दया दत्ती, उसमें पात्र और अपात्र को अपन नहीं देखते, जिसके प्रति करुणा भाव आ गए उसको अपनी जो भी संपत्ति खाने पीने की चीज है वो सब दे देते हैं दया करके, जो भिखारी इत्यादि को अपन अपने मन में दया भाव आ जाता है तो देते हैं। और अगर कोई मजबूरी हो गए कि 4 जने खड़े हैं वो मांग रहे हैं वो न दे हैं, तो 4 जने कहें कि काय के पैसा वारी बताओ, दे तक नहीं रहे सो दे तो दे, चलो हटाओ जल्दी करो अलग हो, ऐसे अपन ने अपने अहंकारवश अगर दे दिया है दान तो वो दयादत्ति नहीं कहलाएगा। अत्यंत दया से द्रवीभूत होकर के जो अपने मन में कि हमने तो इतनी मेहनत से भले ही कमाया है लेकिन ये तो जरूरतमंद है, मैं इसकी मदद करूंगा, ऐसा दया का भाव अपने मन में अगर आता है तो दयादत्ति है। एक इंदौर का उदाहरण बहुत पहले सुनने में आया था, उनके माता पिता से भी मिलना हुआ, उनके माता पिता दोनों ही उस लड़के के, वो लड़का जिसका नाम मयंक था 14 साल का था, उसके माता पिता दोनों ही प्रोफेसर हैं और अपने मामा जी के साथ सोनागिर की वंदना के लिए वो लड़का गया। लेकिन कर्म का उदय किसको छोड़ता है, जन्मदिन के दिन ही वापस लौट रहा था सो कार का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिसमें उसका घात हो गया, जिसको ब्रेन डेथ कहते हैं, अभी पूरी तरह से नहीं मरा है, डॉक्टर की भाषा में अभी हार्ट बीटिंग चल रही है लेकिन ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया है, और थोड़े देर के बाद ही अगर ब्रेन डेथ हो गई है तो 2-5-10 घंटे के बाद पूरी तरह से भी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा डिक्लेयर हो गया। माता पिता से कहा गया कि भाई अब तो बचने वाला नहीं है, करना चाहो तो कर सकते हो, दोनों आंखें किसी दूसरे दो लोगों की रोशनी देने वाली हो सकती हैं, दोनों किडनियां काम आ सकती हैं, पूरी स्किन जो 80% जल गए हैं लोग उन पर ट्रांसप्लांट हो सकती है प्लास्टिक सर्जरी से, इतना कठिन निर्णय ऐसे संवेदनशील क्षणों में उनके माता पिता को लेना था, मोहवश तो नहीं लिया जा सकता लेकिन दयावश तो लिया जा सकता है, क्षण भर उनको मन ही मन बहुत वेदना तो हुई लेकिन उन्होंने दस्तखत कर दिए कि मेरे पुत्र का भी मन था कि मेरे शरीर का एक एक अंग किसी और के परोपकार में लगे, सो उस 14 वर्ष के पुत्र की दोनों आंखें दोनों किडनियां जो देने योग्य थी और पूरी स्किन डॉक्टर को दे दी गई। आप आश्चर्य करेंगे कि जिन लोगों को एक एक आंख दी गई और जिनको किडनी दी गई जो कि मरण की तरफ थे वे आज जीवित हैं और अपने भगवान के साथ में उस 14 वर्ष के बेटे की फोटो लगा करके उस पे अगरबत्ती जलाते हैं कि भगवान तो मैंने
देखा नहीं, लेकिन हमें जीवन दान देने वाला व्यक्ति तो यह है। भाई धर्म तो दया में है, अहिंसा में है। इसमें विचार कर सकते हैं कि ऐसा दान देना चाहिए कि नहीं। गोष्ठी बिठा सकत, बहुत बड़े बड़े पेपर लिखे जा सकत, जस सिद्ध करी जा सकत के देना चाहिए कि नहीं। लेकिन विचार करो कि उस समय कैसे संवेदनशील क्षणों में और दया का भाव आ जाने से यह कार्य आसान हो गया। भाई ये तो सब लौकिक दान है जिनसे मात्र पुण्य का अर्जन होता है, लेकिन पारलौकिक दान भी है जो कि देशव्रति या महाव्रति या कि सम्यक दृष्टि जो अव्रति है, उत्तम मध्यम जगन पात्र को दिया जाता है। चार प्रकार का दान अत्यंत श्रद्धा भाव से वह कर्मों की निर्जरा और पुण्य के अर्जन में कारण बनता है। दान चार प्रकार चार संघ को दीजिए, ऐसा अपन पढ़ते हैं। चार प्रकार का दान है, औषध आहार आवास और ज्ञान दान या उपकरण दान। ये चार प्रकार का दान किसको देना? मुनि आरी का शावक शाविका, इनके लिए देने को कहा। कहे इनके लिए देने को, सबको क्यों नहीं कहा? भाई गुणवान को देंगे, वीतरागी को देंगे तो मेरे भीतर भी मैं यही चाहता हूं कि ऐसे गुण ऐसी वीतरागता आवे, ऐसे अनुराग बस ऐसी श्रद्धा बस मैं दे रहा हूं। और भी प्रकार से देने के लिए है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि जहां वीतरागता है वहां मेरा अनुराग व्यक्त करने के लिए उन सब की भी सहायता के लिए उनकी सेवा के भाव से अत्यंत श्रद्धा भाव से मैं दान दूंगा। वास्तव में दान वही श्रेष्ठ है जिससे के दूसरे का संसार से कल्याण होवे। हमने एक दिन कहा था कि अपन और बहुत सी चीजें, भौतिक चीजें दान में दे देते हैं, सो उससे भी श्रेष्ठ दान है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। विनोबा ने तो लिखा कि किसी को नैतिक रूप से चारित्रिक रूप से बलवान बना दिया, यही उसकी सेवा है। उसको आत्मनिर्भर बना दिया, यही वास्तविक सेवा है। अकेले रोटी कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, तो ये तो बहुत कोई भी दे देगा, ये तो सेवा विशेष नहीं है। विशेष सेवा तो वो है कि जिसको श्रद्धा नहीं है सच्चे मार्ग में, उसको सच्चा मार्ग बता करके उसकी श्रद्धा उत्पन्न कर दी। जिसको आत्मज्ञान नहीं है उसको आत्मज्ञान की रुचि जागृत कर दी। जिसके चारित्र में अभी उतनी ऊंचाई नहीं आई है उसको चारित्र के प्रति उत्साहित कर दिया और चारित्रवान बना दिया, तो ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा दान है। जैन दर्शन में ऐसी ही सेवा और ऐसे ही दान का उल्लेख है जो कि प्राणी मात्र का कल्याण करने में निमित्त बने। बहुत बहुत प्रकार से आज अपन दान देते हैं, काय के लिए देते हैं? उससे क्या दूसरे का कल्याण होगा? बताओ, हमने अगर भोजन इत्यादि करवाया और अभक्ष खिलाया तो उससे, उस दान से क्या हमारा और दूसरे का उपकार हुआ? नहीं भाई, दान तो वही श्रेष्ठ है जिसमें कि हम अपने परिणाम और दूसरे के परिणाम अच्छे करते, उसको भी त्याग के मार्ग पर, चारित्र के मार्ग पर लगाते हैं। आज वर्तमान में मैं तो सोचता हूं, देखता रहता हूं कि जितनी निर्धनता है उस निर्धनता का एक ही कारण है, कर्म का उदय तो अंतरंग कारण है ही व्यक्ति के अभाव के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कारण है उसके चारित्रिक और नैतिक पतन, जो कि निरंतर अपन देखते हैं कि दीनहीन दरिद्र जो अभावग्रस्त है उसके प्रति दया का भाव आता है, लेकिन उसके लक्षण देख करके दया का भाव लुप्त हो जाता। दिन भर में चार रुपया तो कमाएंगे लेकिन 40 रुपए की शराब पी लेंगे, ये क्या है? पाउच खाएंगे, सिगरेट बीड़ी पिएंगे, उसमें अपना पैसा बर्बाद करेंगे लेकिन दो रोटी अपने परिवार के लोग ठीक से खा सकें, शुद्ध भोजन कर सकें, इस बात का उसको विवेक नहीं रहेगा। ये विवेक शून्य या चारित्र को नैतिक पतन से युक्त क्या हम अपना कल्याण कर सकते हैं? क्या वास्तव में हम अपने दान को सार्थक बना सकते? एक बाबा जी थे, सो वो राजा के यहां पर रोज आते और राजा को एक फल, बहुत सुंदर फल था, सो वो दे जाते। तो राजा को किस चीज की कमी है? अब चूंकि बाबा जी ने दिया है इसलिए ले लो भाई, सो मंत्री जी को फल दे देते कि धल लो, दे देना किसी को खाने काम आएगा। मंत्री जी ने सोचा कि बाबा जी ने फल दिया है तो ऐसे खा करके तो नष्ट नहीं करूंगा उनको, जोड़ते जाओ का पता कुछ हो इसमें। सो मंत्री जी ने बुद्धिमानी का काम करके एक कमरे में रोज दिए जाने वाले बाबा जी के फलों को इकट्ठा कर लिया। 6 महीने गुजर गए, रोज फल दे करके जाते बाबा जी। एक दिन अचानक राजा के मन में फल लेते समय आया, बाबा जी से पूछ, वो जो बाबा जी फल देते हैं उनका क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, महाराज मैंने उनको किसी को खाने नहीं दिया, उन्हें तो इकट्ठा करके रख दिया, जाओ देखो उन फलों की क्या स्थिति है, क्या मैसेज देने वाले हैं वो फल। सो जा करके देखा तो फल तो सड़ गए थे, लेकिन उन सब फलों के सड़ने पर, फटने पर उनके भीतर से एक एक हीरा चमक रहा था, उस कमरे में प्रकाश हो रहा था। राजा की आंख खुल गई, बाबा जी से कहा कि आपने दान दिया ऐसा जो कि मुझे जीवन में प्रकाश दे सके, इस सड़े शरीर के भीतर, इन पंचेंद्रिय और मन के विषयों के भीतर वह जो हीरे की तरह दमकता है, प्रकाशित होता है, वह आत्मा मुझे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा संदेश मुझे दिया, उसका कल्याण करना चाहिए। या तो हम आम को जो फल दिया है, जो भी फल है उसको खा करके अपने पंचेंद्रिय और मन का पोषण कर सकते हैं, या फिर उसके भीतर छुपे हुए हीरे से संदेश लेकर के अपने भीतर छुपे हुए परमात्म तत्व को भी उजागर कर सकते हैं, उसका भी कल्याण कर सकते हैं। वास्तव में तो दान वही श्रेष्ठ है, जैसे बाबा जी ने दान क्या दिया, एक सामान्य सा फल था लेकिन उस फल से कितना बड़ा उपदेश दे दिया। भाई इसी तरह अपन भी सेवा करें, दान दें, तो कम से कम अपना भी कल्याण हो और दूसरे का भी कल्याण में वो निमित्त बने। इस प्रकार की द्रव्य अपन दान में दें, ऐसे भावों के साथ दें, तो ही अपना दान और सेवा सफल होगी। ऐसा विचार करके अपने जीवन में दान आवे। आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है।
जो जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता
अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता वो
अर्ध निशा का सन्नाटा मन में वन चारे चरते हो
तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो
करते तप सेल नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में
समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की कड़ियों में
अंतर ज्वाला वाणी मानो झड़ती हूँ फूल झड़िया
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधियां
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप फलार्घ के
धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे मुनि राज मगम
ओम परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज संगस्त मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज मुनि श्री रघु सागर जी महाराज चरणों में अर्घ्य निर्पणित स्वाहा
मिथ्या तम नास वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप पर भास वेको भानु शिव कानी है
छह द्रव्य जान वेको वंदे विधि भान वेको स्वपरि पहचान वेको परम प्रमाणी है
अनुभव बताए वे को जीवों के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को वाणी है
वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दूर